हवेली में अमन को कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक काली जिन मिली थी जो बला की खूबसूरत थी। वो अमन से मोहब्बत का दावा कर रही थी। कोई भी उसे देखकर अपना ईमान खो सकता था, लेकिन अमन ने उसे पहचान लिया और डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। मलिका के जाने के बाद अमन मन ही मन बोला, बेवकूफ काली जिन, मेरा समय बर्बाद कर गई। और अमन अपनी तैयारी में जुट गया। अमन एक बार फिर तहखाने में गया और वहां के एक बंद कमरे में चला गया। वहां कुछ बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। अमन उन तस्वीरों को छूकर कुछ बोलने लगा था या कुछ पढ़कर फूंक रहा था। उस कमरे में 7 लोगों की तस्वीरें थीं। अमन एक एक तस्वीर को छूता गया और कुछ पढ़ता गया। जब वो सभी 7 तस्वीरों को छू चुका और सब पर फूंक मार चुका, तब उसने 3 बार तालियां बजाईं। और देखते ही देखते वे तस्वीरें जीवित हो उठीं और उनमें से निकलकर 7 आदमी बाहर आ गए। और बाहर आते ही अमन के सामने झुककर उसे सलाम करने लगे। अमन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, 21 साल के बाद एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। वे लोग उस तस्वीर से पूरे 21 साल बाद बाहर आए थे। तभी वे 7 एक साथ बोल उठे, क्या हम हमारा काम शुरू कर दें? अमन ने हां में सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल गया। वे 7 लोग कोई आम लोग नहीं थे। उन्हीं के बनाए गए खाने से जिन्नों की दावत होती थी। उनके हाथों में बड़ा ही स्वाद था जो किसी भी जिन्न को कुछ भी करने पर विवश कर सकता था। अपने खाने के द्वारा वे लोग जिस भी जिन्न से जो मांगते या करने को कहते तो कोई उन्हें मना नहीं कर सकता था। इन 7 की डोर केवल एक ही इंसान के हाथ में थी, जो आधा इंसान और आधा जिन था। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो अमन सिंह राठौर था। वे 7 हवेली के बड़े से रसोई घर में जा चुके थे और अपनी तैयारी करने लगे थे। वे लोग चाहते तो शक्ति के द्वारा जादू से हर तरह का खाना वहां रख सकते थे, लेकिन ऐसा करने से उनका हुनर किसी काम का नहीं रहता और जिस मकसद के लिए ये दावत की जा रही थी वो कभी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें सारा खाना अपने हुनर से ही बनाना था और लास्ट में सभी खाने पर फूंक मारनी थी। 7 जादुई बावर्ची अपना काम शुरू कर चुके थे। वे लोग अपना काम बड़ी ही स्पीड से कर रहे थे क्योंकि उनके पास केवल 2 दिन थे। इन 2 दिनों में जितना हो सकता था उन्हें उतना खाना बनाना था। उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो अमन सिंह राठौर हमेशा के लिए उन्हें उन तस्वीरों में कैद कर देगा। वहीं अमन अपनी हवेली के हॉल में बैठा हुआ था और रह रहकर तारा को याद कर रहा था। बस यही सोच रहा था कि काश वो एक बार उससे अपने किए की माफी मांग पाता। और मन ही मन बोला, कहाँ हो तारा, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। अभी अमन तारा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक नौकर ने आकर बताया कि हवेली के दरवाजे पर कोई आया है। अमन ये जानने के लिए कि कौन आया है बाहर की ओर चल दिया। जैसे ही उसने दरवाजे के उस पार देखा उसके होश उड़ गए। दरवाजे के उस पार कोई और नहीं बल्कि तारा खड़ी थी। अमन जल्दी से दौड़कर बाहर गया और उसने जाते ही तारा को गले से लगा लिया और तारा ने भी उसे टाइट हग कर लिया। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस वक्त उसे तारा से मिलने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसने ये बात इग्नोर कर दी और उसे लेकर अंदर आ गया। अंदर पूरी हवेली में खाने की खुशबू फैली हुई थी। इतनी जबरदस्त महक थी कि वो तारा अपने आप को रोक नहीं पाई और खाने की महक सूंघती हुई बावर्ची खाने में जा पहुंची। अमन तो बस उसके पीछे पीछे था और उसे देख रहा था। आज तारा ने मेकअप किया था और बेहद डार्क रेड लिपस्टिक भी लगा रखी थी। अमन सोचने लगा, तारा तो कभी मेकअप नहीं करती थी तो फिर ये आज मेकअप करके यहाँ क्यों आई थी? तभी अमन के दिमाग में एक बिजली सी कूंधी और वो समझ गया कि ये तारा कौन थी। और वो जल्दी से भागकर बावर्ची खाने में गया तो उसने देखा वो नकली तारा जादुई बावर्चियों द्वारा बनाया गया खाना छूने ही वाली थी। अमन ने खाना छूने से पहले जल्दी से वहां जाकर उसे रोक दिया। नकली तारा सवालिया नजरों से अमन की ओर देखने लगी। अमन ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है खाना खाने की, चलो पहले हम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें तो कर लें। वो उसका हाथ पकड़कर रसोई से बाहर ले जाने लगा, लेकिन वो नकली तारा बार बार उस खाने को मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन अगर वो उस खाने को छू लेती तो वो खाना किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि जिन्नों की दावत के लिए तैयार किया गया खाना सबसे पहले जिन्नों के सरदार को खिलाना होता है, जो काम अमन का होता है। ये कोई नहीं जानता, आने वाले समय में जिन्नों का सरदार अगर कोई होगा तो वो अमन होगा, लेकिन अभी जिन्नों का सरदार उसका दादाजी है जिन्होंने उस बगीचे के बड़े से बरगद के पेड़ के अंदर समाधि ले रखी थी। अमन उस नकली तारा को हॉल में ले गया और उसे ना चाहते हुए अपने पास बैठा लिया और बोला, तारा तुम कहाँ चली गई थी, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना याद किया।
अमन उसके बालों में उंगली घुमाते हुए बोल रहा था। अमन ये नहीं जानता था कि उसके बालों को प्यार से छूने से वो नकली तारा मदहोश होने लगी थी और वो और थोड़ा खिसक कर अमन के करीब आ गई थी और वो अपनी गर्म सांसें अमन की गर्दन पर छोड़ रही थी। लेकिन अमन उसके मुंह से सच उगलवाना चाहता था। वो चाहता तो उसी वक्त उसे मसल सकता था, लेकिन वो तारा का रूप लेके आई थी। अमन चाहे कुछ भी तारा के प्रति रूप पर हाथ नहीं उठा सकता था। जब वो नकली तारा अमन के जिस्म पर हावी होने की कोशिश करने लगी, तभी अमन ने उसे बालों से पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, तारा एक बात बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे और कब से प्यार करती हो? जैसे ही उस नकली तारा ने सुना, वो भाववश में कह गई, मैं पिछले 25 सालों से प्यार करती हूँ तुमसे, मैं पूरी तरह से मिल जाना चाहती हूँ तुमसे। अमन उसकी बात सुनते ही मुस्कुराने लगा और बोला, मलिका और क्या क्या चाहती हो तुम, ये भी बता दो। जैसे ही नकली तारा जो कि मलिका थी अमन के मुंह से अपना नाम सुनते ही चौंक गई और तुरंत अपने असली रूप में आ गई और उसके रूप बदलते ही अमन ने एक बार फिर से उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। मलिका हैरान हो गई और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमन की मजबूत पकड़ से वो इतनी आसानी से नहीं बच सकती थी। तभी उसने अपने बचाव का रास्ता निकाल लिया और तुरंत एक बार फिर से उसने तारा परी का रूप ले लिया। तारा को देखते ही अमन की उसके गले पर पकड़ ढीली पड़ गई और अमन की पकड़ ढीली होते ही मलिका ने मौका पाकर खुद को अमन से आजाद करा लिया और वहां से भाग निकली। अमन हैरानी से उसे देखता रहा और सोचने लगा, आखिर किसके कहने पर ये यहाँ आ रही है और कौन भेज रहा है इसे। इस बात का पूरा यकीन था कि जिन्नों की दावत के बाद उसके सारे सवालों के जवाब भी उसे मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर तारा परी का ध्यान पूरा होने वाला था, लेकिन अभी तक कुल देवता उसके पास नहीं आए थे। वहीं सोनल परी ने तारा परी का अदृश्य चक्र हटा दिया था, क्योंकि तारा परी का ध्यान उसी समय खत्म होने वाला था जिस समय शुरू हुआ था और उसमें केवल कुछ ही देर बची थी, इसलिए सोनल परी ने उसका अदृश्य घेरा हटा दिया था। और तभी पूरे बगीचे में अचानक एक बहुत तेज रोशनी से कूंदने लगी थी। सोनल परी अपनी नग्न आंखों से वो रोशनी नहीं देख पाई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन तभी तारा परी उड़ते हुए वहां आ गई। तारा परी में से अनेकों रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी रोशनी सिमट कर तारा परी के अंदर आ गई हो। सोनल परी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। उसे तारा परी नॉर्मल परी नहीं लग रही थी। उसमें से अनेकों रंगों की रोशनी देखकर वो सोच में पड़ गई और उसके पास जा पहुंची थी।
तभी सोनल परी ने उसे पुकारा और तब तारा परी ने अपनी आंखें खोली और तारा परी के आंखें खोलते ही सारी रोशनी गायब हो गई थी। तब सोनल परी भागकर तारा परी के पास पहुंच गई और उसे गले से लगा लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही गले लगी रहीं। तभी सोनल परी ने तारा परी से पूछा, क्या हुआ तारा परी, कुलदेवता आए, कुछ बोला उन्होंने, क्या बताया, क्या अमन वो नेक दिल इंसान है जिसके लिए तुम पृथ्वी पर आई हो? तारा परी कुछ नहीं बोली और उसे देखती रही। 3 दिन ध्यान करने से तारा परी की शक्तियां और बढ़ चुकी थीं और अब उसकी शक्ति परीलोक की रानी माँ से भी ज्यादा हो चुकी थी। तारा परी ने कहा, नहीं, कुलदेवता ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है अमन का सच पता लगाने का। सोनल, अच्छा तो क्या रास्ता दिखाया है कुलदेवता ने? तारा परी, ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले चलो हमें अमन सिंह राठौड़ के पुश्तैनी गांव जाना होगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी सोच से काफी परे है। लेकिन तारा, तुझे किसने बताया कि अमन अपने पुश्तैनी गांव में है? तारा परी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। सोनल परी, तारा परी, ऐसा क्या हुआ है ध्यान के समय जो तुम में इतनी शक्तियां आ गई हैं? और इतना ही नहीं, तुम्हें अमन के गांव के बारे में किसने बताया? तारा परी, अभी समय नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने का, तुम चलो, हमें जल्दी जाना होगा इससे पहले कि दावत शुरू हो जाए। जैसे ही वे लोग बगीचे से बाहर निकलने वाले थे, तभी सोनल परी ने तारा परी को रोका और बोली, मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ। तारा परी, क्या, तो मुझे क्या बताना चाहती हो? तब सोनल परी ने कहा, वो रात के तीसरे पहर मालिका का। सोनल परी ने इतना ही कहा था कि तभी तारा परी बोल उठी, यही ना कि मालिका का आधी रात के बाद बरगद के पेड़ के पास आए और उन्होंने एक जगह पानी फेंका, फिर रोए और उस जगह से सफ़ेद धुआं और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तारा परी के मुंह से ये सारी बात सुनते ही सोनल परी बेहद शॉक्ड हो गई और कहने लगी, तुम तो ध्यान में थी, फिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तारा परी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगी।